जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय गुरु गौर प्रेमानंदे हम श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहा था, बल्कि लगभग डेढ़ महीना हुआ है। मैं कितने दिन के बाद में आ रहा है, लगभग डेढ़ महीना, तो डेढ़ महीने के बीच पाठ हुआ था कुछ दस पंद्रह दिन बाद। तो आज मैं सोचा महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को शिक्षा के आधार पर विचार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन जाते हुए उत्तरबंग के मालदह के पास रामकेली के नाम के एक गांव है, वहाँ ठहरे थे महाप्रभु। वहाँ गए थे, वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कृपा करने के लिए। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दो भाई थे, उनका और एक भाई था जिनका नाम था अनुपम। यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण वंशज ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, बल्कि मुसलमान नवाब के मंत्री बनने के कारण ब्राह्मण समाज उनको त्याग दिया था, समाज से बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण समाज इतना कठोर था कि अगर कोई भी किसी प्रकार का संपर्क, अगर संस्पर्श, संपर्क ही नहीं केवल, अगर संस्पर्श कोई मुसलमान के साथ होता था तो उसको समाज से निकल देते थे, मतलब उनको ब्राह्मण नहीं मानते थे। मृणालिनी, यू अंडरस्टैंड हिंदी? वेरी गुड। सो यद्यपि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी केवल ब्राह्मण ही नहीं, बचपन से बहुत कृष्ण, बड़े कृष्ण भक्त थे। सनातन गोस्वामी जब उनका बाल्यावस्था में एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि एक ब्राह्मण आके उनको एक श्रीमद् भागवत दे रहे हैं, और नींद टूटने के पश्चात सही रूप से ही एक ब्राह्मण आके उनको एक श्रीमद् भागवत दान किया। तो ये देखते हुए और तब से सनातन गोस्वामी भागवत को अपना नित्य संगी बना लिया। सपना में देखा जो ब्राह्मण सचमुच ही आकर एक श्रीमद् भागवतम उनको दान किया, और तब से श्रीमद् सनातन गोस्वामी ने भागवतम को ही अपना नित्य संगी बना लिया। और इसके बारे में, भागवत के बारे में उन्होंने बताए थे कि मदैक बंधु, मेरे प्राण प्रिय एक सखा है ये श्रीमद् भागवत। यद्यपि उन्होंने इतने महान कृष्ण भक्त थे, परंतु मुसलमान के साथ संपर्क बनने के कारण ब्राह्मण समाज उनको त्याग दिया था, और उनको ये राजा को मंत्रित्व ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि वो हुसैन शाह इतना निशंस था कि अगर कोई भी उसको ये आदेश या अनुरोध या उपदेश ना ग्रहण करता तो उसको, केवल उसको ही नहीं, उनका परिवार समेत सबको मार डालता था। तो इसी स्थिति में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को और कोई उपाय नहीं था राजा को मंत्रित्व ग्रहण करने का बिना। और महाराज मतलब हुसैन शाह उस समय भारत के दो एक राज्य व्यतीत, दो चार राज्य व्यतीत सारे भारत मुसलमान को ही कब्जे में आ गया था। जैसे उत्तर भारत सारे उत्तर भारत मुसलमानों का अधिकार में आ गया था, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। और पूर्व भारत में बंगाल बिहार सारे मुसलमानों के कब्जा में आ गया था। बंगाल का नवाब था उस समय हुसैन शाह, वो अफगान के अफगान था, अफगानिस्तान से आया था वो हुसैन शाह। और केवल उड़ीसा का राजा था महाराज प्रताप रुद्र, एक केवल एक हिंदू राजा था। और प्रताप रुद्र का राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक था। आज जो आंध्र प्रदेश है वो भी प्रताप रुद्र का अधिकार में था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखे थे कि आप कृपा करके हमें उद्धार कीजिए। तो तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कृपा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते समय वहां रुके थे रामकेली गांव में। तब उनके मिलन मुलाकात के बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये राजकाज पूरा त्याग देंगे। यद्यपि सनातन गोस्वामी थे हुसैन शाह का प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी था फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थमंत्री दो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट उस राज्य का था। उस पोस्ट में थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। महाप्रभु के साथ मुलाकात होने के पश्चात कुछ दिन के बाद ही रूप गोस्वामी ने सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले गए थे। उनका इतना दौलत था उसका वर्णन करते हुए बताया गया कि दो नाव में भरकर उन्होंने अपना सोना ले गए थे। उनका जो मूल वास स्थान जो था गांव बाकला चंद्रपुर में जशोहर जो आप पूर्व बंगाल में है बांग्लादेश में है वहाँ ले गए थे नाव से। और तो बताए ये कितने मशहूर थे कितने रईस थे उन्होंने कि दो नाव भरकर एक नाव से नहीं दो नाव भर के स्वर्ण मुद्रा ले गए थे। और सनातन गोस्वामी जब राजकाज में इस्तीफा देने के लिए हुसैन शाह को बताया तो हुसैन शाह ने बताया देखिए आपका भाई दस्यु है डाकू है वो केवल मनुष्य को कष्ट देता है क्लेश देता है राजकाज करने का राजकार्य को संभालने का लायक वो नहीं है आप ही के कारण राजकार्य चल रहा है तो आप अगर चले जाएंगे तो राज्य का हाल कैसा होगा। तब सनातन गोस्वामी ने बताया कि नहीं मेरा दिल नहीं चाहता है मैं जाना चाहता हूँ। तो हुसैन शाह ने बताया कि मैं उड़ीसा जा रहा हूँ वहाँ संग्राम करने के लिए महाराज प्रताप रुद्र के साथ संग्राम होने वाला था उनको साथ जाने के लिए बोला। बल्कि सनातन गोस्वामी बताया कि आप भगवान को कष्ट देने के लिए जा रहे हैं आपके साथ मैं नहीं जाना चाहता। तो ऐसे जब हुसैन शाह देखा कि सनातन गोस्वामी किसी तरह उनके बात नहीं मानेंगे, तब वो उनका जो बॉडीगार्ड था उनको बताए, उसको अरेस्ट करके कारागार में डाल दो, और जब तक मैं वापस ना आता हूँ तब तक उसको कारागार में रहने दो, और मैं आके फैसला करूँगा उसको क्या करना चाहिए। तब सनातन गोस्वामी को कारागार में निक्षेप किया गया, और सनातन गोस्वामी और हुसैन शाह चले गए उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए। तब सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने तो प्रधानमंत्री थे, काराध्यक्ष के साथ भी उनका बहुत ही जान पहचान था, तो काराध्यक्ष को समझाया कि देखो मैं भगवान के सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम इस कार्य में भगवान को सेवा करने में अगर तुम हमें मदद दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और मेरे पास 7,000 स्वर्ण मुद्रा है, वो भी मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हारा दो तरह का फायदा होगा, एक तो आध्यात्मिक फायदा होगा और भौतिक भी। तो बल्कि वो बोला, देखिए अगर मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा तो नवाब तो हमको जान से मार डालेंगे, तो पैसा लेके तो क्या था फायदा होगा। तो सनातन गोस्वामी ने तो उनका बताया कि देखिए आप ऐसा नहीं कहना कि मैं आप हमको निकाल दिए छोड़ दिए ऐसा, परंतु राजा को ऐसे बताना कि मैं मल त्याग करने के लिए नदी के किनारे में गया था जंजीर समेत, और जंजीर समेत मैं नदी में गिर गया, और आप तलाश करके भी हमें कुछ पता नहीं लगा सका, मैं नदी में डूब गया। तो काराध्यक्ष का ये सलाह बहुत पसंद आया, और वो राजा को सनातन गोस्वामी को ऐसे छोड़ दिया। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका मुलाकात हुआ वाराणसी में। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाकर जब वापस आ रहे थे तब प्रयाग में, मतलब गंगा और जमुना के संगम त्रिवेणी में, रूप गोस्वामी के साथ उनका मुलाकात हुआ, और जब उन्होंने वाराणसी काशी आए थे तब वहाँ सनातन गोस्वामी के साथ उनका भेंट हुआ। सनातन गोस्वामी का खबर मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ ठहरे हैं काशी में, तब महाप्रभु के साथ मिलन हुआ उनका। मिलन होने के पश्चात सनातन गोस्वामी ने उनको पूछा, अच्छा इसके इस समय भी एक बहुत सुंदर एक घटना हुआ था जिसका भी मैं बताना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी जब आए थे वहाँ, बहुत दिन लगा आने में बंगाल से वाराणसी तक, और उन्होंने तो ऐसे वैसे सही मार्ग से आ नहीं सका, क्योंकि उन्होंने इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इन्हें इतने मशहूर व्यक्ति थे कि कोई आदमी, बहुत सारे आदमी उनको पहचानता था, तो वैसे सही मार्ग, मतलब क्या बोलते हैं, राजपथ, हाईवे, रास्ता से अगर नहीं आ पाया तो उन्होंने वन पथ से, जंगल के अंदर से उन्होंने घूमते घूमते आए थे, और जब गाजीपुर में आए थे, गाजीपुर में सनातन गोस्वामी के ब्रदर इन लॉ, उनका नाम क्या था नाम, एनीवे, श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को साथ मुलाकात हुआ। श्रीकांत राजा के लिए मतलब हुसैन शाह के लिए घोड़ा खरीद रहा था वहाँ गाजीपुर में, बहुत अच्छा घोड़ा मिलता था। तो राजा के लिए तो हजारों घोड़ा का ज़रूरत होता है, तो वो वहाँ रहकर राजा को घोड़ा भेजते थे, वो घोड़ा सप्लाई का एजेंट थे राजा का गाजीपुर में। तो गाजीपुर में सनातन गोस्वामी के साथ श्रीकांत का मिलन हुआ। तो श्रीकांत ने तब सनातन गोस्वामी को एक बहुत मूल्यवान कंबल दिया था, भोट, जिसे भोट कंबल, जैसे पश्मीन होता है ऐसे, बहुत ही कीमती एक ये श्वाल दिए थे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब आके, ऐसे लगा सनातन गोस्वामी जब आया महाप्रभु के मिलने के लिए घर के सामने, महाप्रभु तब तपन मिश्र के घर में ठहरे थे, एक भक्त जिनका नाम था तपन मिश्र, तपन मिश्र का घर में ठहरे थे। तो महाप्रभु ने तपन मिश्र को बोला, देखो बाहर एक भक्त खड़ा है, खड़े हैं, तुम उनको बुलाओ। तो तपन मिश्र ने जब बाहर आकर देखा कोई भक्त नहीं है, तो जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया, कोई भक्त, कोई वैष्णव भक्तों को तो मैं नहीं देखा, कोई वैष्णव भक्त नहीं है बाहर। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि बाहर कोई आदमी खड़े हैं क्या? बोला हाँ, एक मुसलमान फकीर है। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, तो उनको ही बुलाओ। तो वैसे सनातन गोस्वामी को जब अंदर लाए तो महाप्रभु उनको अपने गले लगा लिया। तो सनातन गोस्वामी को बहुत संकोच हुआ कि मैं इतना गंदा हूँ और मेरा, और महाप्रभु हमें स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे तो बताया, आप मुझे मत छुइए, बल्कि महाप्रभु जोर से उनको अपने गले लगा लिया और बताया कि मैं तुमको स्पर्श कर रहा हूँ अपने आप को पवित्र करने के लिए, तुम्हारे भक्ति के प्रभाव से तुम सारे ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हो। तुमा स्पर्शी आत्मो पवित्रिते भक्ति बोले पारो तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते, सारा ब्रह्मांड को तुम शोधन कर सकते हो। तब कुछ ऐसे महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी का मिलन हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु तब सनातन गोस्वामी को बोला, जाओ तुम नहा के धो के पवित्र बन के आओ, मतलब साफ सुथरा होकर आओ। तो सनातन गोस्वामी गया गंगा में जाकर, अपना मस्तक मुंडन किया, दाढ़ी वगैरह जो था उसको भी शेव किया और गंगा में नहा के, तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को एक नया कपड़ा दिया। तो सनातन गोस्वामी ने उस कपड़ा को स्वीकार नहीं किया, बोला हमें एक पुराना कपड़ा दीजिए। तो तब तपन मिश्र ने एक पुराना धोती लाया, उस कपड़ा को आधा करके सनातन गोस्वामी ने एक भाग से, एक आधा भाग से बहिर्वाश, मतलब ऐसे पहना, और जो आधा था उसको चादर जैसे पहना। बल्कि वो जो भोट कंबल था, क्योंकि उस समय ठंडा था, विंटर सीजन था, तो ठंडे के कारण वो कंबल रख लिया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको मस्तक मुंडित रूप से दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए, बल्कि महाप्रभु ने उनको भेंट कंबल के प्रति दृष्टिपात किया। तो देख, तभी सनातन गोस्वामी को पता चला, तो झट से उन्होंने गंगा के किनारे गए और देखा एक गौड़ीय बंगाल के एक वैष्णव वहाँ नहा रहे थे। तो उनको जो कंथा था, मतलब पुराना हिंदी में भी कंथा शब्द का प्रयोग होता है क्या?
गुदरी,
मतलब पुराना तीन चार कपड़ा एक इकट्ठा करके उससे, हाँ
नहीं रहा,
पहले होता था, हाँ तो उसे उसको पूछा कि आप कृपा करके मेरे ये कंबल लेके आपका कंथा देंगे गुदरी देंगे। तो तब वो बताया कि आपको शक्ल से तो लगता है कि आप एक रईस, मतलब भद्र लोक हिंदी में सम्रांत आदमी हैं, बल्कि हम ऐसे मजाक क्यों कर रहे हैं? हमको हमारे इतने मजाक क्यों उठा रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी बोला, नहीं मैं सच ही कह रहा हूँ। वो सोचा है कि मजाक कर रहे हैं कि ये, तो बोला नहीं मैं सच कह रहा हूँ, आप ये भोट कंबल लेके हमको आपका कंथा दीजिए, गुदरा दीजिए। तो ये लेकर जब महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुआ। महाप्रभु तब बताया, कृष्णा एक कृष्णा सबको दिल साफ करने में बहुत लायक है। जैसे एक वैद्य, अच्छा वैद्य जो है वो बीमारी का लेश तक भी नहीं रखता है, वो सारा बीमारी एकदम खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण जो विषय भोग, जो भव रोग जो है, ये मतलब भौतिक जगत के प्रति आसक्ति जो है, इस आसक्ति को लेश मात्र कण भर भी क्यों तुमको हृदय में रहने देंगे। तो ये महाप्रभु ने बहुत प्रसन्न हुए होकर उनको ये बताया। तब सनातन गोस्वामी ने उनको महाप्रभु को पूछा था कुछ प्रश्न, और 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए थे। तो ये शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को ऐसे बताया, आपोनार हिताहित किछुई ना जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे पंडित मानते हैं और मैं भी अपने को ऐसा ही सोचता हूं। कृपा कोरी जदि मोरे करियाछ उद्धार, आपन कृपाते कहो कर्तव्य आमार। आपने अपनी अहैतुकी कृपा द्वारा भौतिकतावादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया है, अब उसी कृपा से आप मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बताइए। मेरा जीवन का कर्तव्य क्या है, कृपा करके हमें बताइए। कि आमी कैने आमारे जाड़े तापुत्रय, इहा नाही जानी कैमने हित है। यू वांट चैतन्य चरितामृत? नो, बट इट विल कंटिन्यू। ओके, यू आर एन एक्सपर्ट। कि आमी कैने आमारे जाड़े तापुत्रय, इहा नाही जानी कैमोने हित है। गिव इट टू जमुना प्रिया, शी कैन रीड द इंग्लिश थिंग। ओ आई सी, ओ गंगानारायण इज रियल। मैं कौन हूँ, तीनों ताप मुझे कष्ट क्यों देते हैं, यदि मैं ये नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ। साध्य साधन तत्व पूछीते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। वास्तविकता तो ये है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसके प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण होय, सब तत्व जानो तुमार नाही तापुत्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा, तुम पर भगवान की पूरी कृपा है कि तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात हैं। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। त्रिताप क्या है? आधी आत्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक। आधी आत्मिक ताप है शरीर और मन से जो जो कष्ट या क्लेश प्राप्ति होता है वो है आधी आत्मिक क्लेश। दूसरे लोगों ने या दूसरे कोई जो क्लेश देते हैं, कष्ट देते हैं, और दूसरे के कारण जो कष्ट होता है वो है आधी भौतिक, और दैव के कारण जो जैसे भूकंप, ये वान महामारी, युद्ध लड़ाई, जिसके द्वारा भौतिक कारण जो क्लेश होता है, मतलब दैव के कारण जो क्लेश होता है उसे आधी दैविक कहा जाया गया है। थ्री फोल्ड मिजरीज, मिजरीज ड्यू टू बॉडी एंड माइंड, मिजरीज कॉज बाय अदर्स, एंड मिजरीज कॉज बाय नेचुरल कैलामिटीज। सो एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू दिस थ्री टाइप्स ऑफ सफरिंग। ये थ्री ताप क्लेश सबको ही भोगना पड़ता है, इससे कोई किसी का कभी मुक्ति नहीं होता। जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं तो सनातन गोस्वामी ने पूछे थे कि कियामी हमारे कहने जाड़े तापोत्र, मैं कौन हूँ और क्यों ये त्रिताप क्लेश हमें भोगना पड़ता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब बताया, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण है, सब तत्व जानो तोमार नाही तापोत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम पर भगवान की पूरी कृपा है कि तुम्हें ये सारे बातें ज्ञात हैं, तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को शरण ले लेते हैं उनके लिए त्रिताप नहीं रहे। कृष्ण शक्ति धरो तुमि जानो तत्व भाव, जानी दार्ड लागी पूछे साधुर स्वभाव। क्योंकि तुम्हें कृष्ण शक्ति प्राप्त है अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए ये प्रश्न करता है। अचिरादेव सर्वर्थ सर्वार्थ सिद्ध तेषाम अभिप्सितः साधर्मस्याद बवोधाय येषां निर्बंधिनी मति। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों को पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुनो कहिए तोमाते। तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के यज्ञ हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाऊंगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। सूर्यांश किरण जयछे अग्नि जाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। कृष्ण का नित्य दास होना जीव का स्वाभाविक स्थिति है। जीव का स्वरूप, अपना स्वरूप में जीव भगवान का नित्य सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और वो भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न हो जाते हैं, भिन्न है जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कर्ण। कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार हैं। तो यहाँ शुरू में ही चैतन्य महाप्रभु ये जो आध्यात्मिक तत्व का तीन प्रकाश के बारे में कह रहे हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति। ईश्वर या भगवान है श्री कृष्ण और जीव है भगवान का नित्य सेवक, और जीव और भगवान में संपर्क कैसी है, जैसे सूरज और सूरज का किरण कण, सूरज का किरण कण सूरज का अंश होने के कारण गुण के अनुसार एक है, परंतु उसका आयतन भिन्न है। एक कण में भी सूर्य का ज्योति और ताप है, सूरज का किरण कण में भी ज्योति है और ताप है, और सूरज में भी ज्योति है और ताप है, बल्कि दोनों में भिन्न क्या है, भेद क्या है। सूरज है विशाल या पूर्ण और किरण कण है छोटे, तो ये भेदाभेद प्रकाश, भेद तटस्थ शक्ति होने के नाते भेद और अभेद उनका ये है। भगवान के साथ उसका भेद है और अभेद भी है। अभेद क्या है, जीव और ईश्वर में अभेद क्या है, कि ईश्वर सच्चिदानंद, जीव भी सच्चिदानंद, बल्कि ईश्वर है पूर्ण सच्चिदानंद और जीव है क्षुद्र सच्चिदानंद। जैसे बाद में इसका वर्णन होगा कि आग और चिंगार भी आग है, बल्कि चिंगार एक क्षुद्र आग है। चिंगार जब तक आग में रहता है तब तक वो आग रहता है, अग्नि का जो गुण है वो सारे चिंगार में रहता है, परंतु चिंगार जब आग से निकल जाता है तब उसमें दाही का शक्ति या ताप या ज्योति रहता है नहीं, चिंगार तब बुझ जाता है। वैसे ही जीव जब भगवान के साथ युक्त रहता है तब जीव भी सच्चिदानंद रहता है, बल्कि जब जीव भगवान से अलग हो जाता है तब उसका जो सच्चिद आनंद प्रकृति जो जीव का था वो खोकर वो असत अचेतन और निरानंद बन जाता है, उसका विपरीत भाव प्राप्त हो जाता है। जैसे चिंगार जब आग से निकलकर खाक में पड़ता है, गिरता है, तो उसमें क्या अग्नि का शक्ति रहता है ना, वो भी खाक बन जाता है। तो जीव भी वैसे जब तक भगवान के साथ युक्त रहता है तो उसमें भगवान के जो शक्ति एक रहता है, बल्कि जब अलग हो जाता है तो वो शक्ति को खो बैठता है, चिन्मय शक्ति जो है उसको खो जाता है। तो वैसे जीव और ईश्वर में भेद और अभेद का वर्णन केवल एक श्लोक में श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा, बंगला और हिंदी एक ही जैसा है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जीवेर स्वरूप होय, जीव का स्वरूप होता है कृष्णेर नित्य दास, श्री कृष्ण का नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, कृष्ण का तटस्था शक्ति। अच्छा, ये तटस्था शक्ति का भी विश्लेषण ऐसे होता है, यह हम समझ सकते हैं। तट रेखा, नदी का किनारे में हम तट रेखा देखते हैं, तो ये तट का जो है, तट का अस्तित्व है क्या, तट का अस्तित्व कैसा होता है, तट का इस साइड में पानी और उस साइड में जमीन। तो ऐसे ही भगवान का अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, मैं जो बोला था तीन शक्ति, एक है भगवान का अंतरंग शक्ति, एक है बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति है भगवान का चिन्मय जगत, चिन्मय जगत जो है वो है भगवान का अंतरंग शक्ति जहां भगवान नित्य विराजमान है, और बहिरंग शक्ति ये भौतिक जगत। ये भौतिक जगत कैसी है? ये भौतिक जगत अचेतन है। इस भौतिक जगत का सब कुछ अचेतन है ना। जैसे ये सब पदार्थ जो है, मैटर इज इनर्ट। ये बुक स्टैंड, ये ग्लास, ये टेबल, ये माइक्रोफोन, ये सारे अचेतन है। तो इस भौतिक जगत अचेतन जगत है, और जीव ये दोनों जीव है भगवान, भगवान का ही शक्ति, परंतु जीव में या तो भौतिक जगत में रहने का या आध्यात्मिक जगत में रहने का प्रेरोगेटिव रहता है, मतलब स्वतंत्रता रहता है। जीव खुद विचार कर सकता है कि मैं भौतिक जगत में रहूं या आध्यात्मिक जगत में जाऊं। तो भौतिक जगत में कब जीव आता है? जब वो भगवान से अलग हो जाता है। तो भगवान से अलग हो जाने के कारण हम भौतिक जगत में गिरे हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? भगवान के साथ संपर्क अलग हो जाने के कारण भौतिक जगत में गिरा, तो भगवान के साथ संपर्क अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या होगा? हाँ, तो हम आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकते हैं। तो ये जो है, ये स्वतंत्रता हमारा है। हम खुद विचार कर सकते हैं कि हम यहां रहे या वहां जाए। अच्छा, तो मैं जो बताया था, भौतिक जगत में सब कुछ अचेतन है, जड़ है। यह भौतिक जगत को इसलिए जड़ जगत कहा जाता है, यहां सब कुछ अचेतन है। अच्छा, जैसे मैं बोला, ये टेबल स्टैंड, बुक स्टैंड, टेबल, माइक्रोफोन, ग्लास, फ्लोर, रूम, सीलिंग, वॉल, ये सब अचेतन है। बल्कि हम और आप, मैं और आप, हम चेतन हैं। क्यों? क्योंकि यद्यपि हमारे ये शरीर भौतिक है, बल्कि इस भौतिक शरीर में आत्मा है। आत्मा रहने के कारण ये शरीर चेतन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम स्वरूप में हम आत्मा हैं, बल्कि हम यहाँ ये अपना शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। क्योंकि हम अपना शरीर को हमारा स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए हम इस शरीर का बंधन में गिर गए। तो आप देखिए, चिंगार था आग, आग से निकलकर खाक में गिरकर आग बन गया। तो हम लोग भी इस भौतिक जगत में भगवान से अलग होकर इस भौतिक जगत में आने के कारण हम भी भौतिक बन गए। तो कृष्ण ये तीन, तो ये सब समझ गए। अच्छा, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। कृष्ण का नित्य दास होना जीव की वैधानिक स्थिति है। ये हिंदी सरल है। अच्छा, सरल भाषा में तो होगा कि जीव अपना स्वरूप में भगवान का नित्य दास है। भगवान का दास बनना ही जीव का वैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, और वो भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न हुए हैं, जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण। कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार के हैं। यह से विष्णु पुराण से एक श्लोक का उद्धृति हुआ है। एक देश स्थित ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस ब्रह्म न शक्ति तथेदम अखिलं जगत। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परब्रह्म भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैला हुई है। कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। जैसे मैं बताया था, भगवान का तीन शक्ति क्या है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो हाँ, इसका चित, अंतरंग शक्ति क्या है, चित शक्ति, चित शक्ति, और बहिरंग शक्ति क्या है, माया शक्ति, और जीव है तटस्थ जीव शक्ति। तो ये तीन प्रकार का भगवान, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संगन्या तृतीया शक्ति विष्यते। मूलतः कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी होती है, यही भगवान की तीसरी शक्ति है। इस सिलसिले में हम ये विचार कर सकते हैं, देखिए कि मैं जो बताया था चिंगार और आग, चिंगार भी आग है, आग भी आग, तो आग ही है। तो वैसे ही भगवान का, कृष्ण का जो मूलतः शक्ति जो है वो मूलतः आध्यात्मिक है और जीव भी आध्यात्मिक है। आग आग है, चिंगार भी आग है, बल्कि ये दोनों को अलावा और एक शक्ति है जो है अविद्या, तो जिसे, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्म से बनी होती है, ये भगवान की तीसरी शक्ति है, ये अविद्या कर्म संगन्या। तो ये अविद्या शक्ति है माया शक्ति। साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख है, सेई जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ाय। You are living now, little Malini? Where is your mother? Okay, so have a safe flight. Thank you for coming. Hare Krishna. Yeah, the car is ready? Gari ready? Watch it. Lakshmi is ready. সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণন্মুখ হয়, সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়ায়। তো মে বতায়া থা আধ্যাত্মিক শক্তি, তটস্থা শক্তি আর মায়া শক্তি। তো জীব মায়া, কৃষ্ণ বহির্মুখ হনে কি কারণ জীব মায়া শক্তি মে গিরা হ্যাঁ। তো আব বর্ণন হো রা সাধু আর শাস্ত্র কি কৃপা সে যদি यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसी साधु पुरुष को कृपा से कृष्ण भावना भावित तो हो जाता है, जो उसे शास्त्र का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता देता है, तो वो बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, माया के पाश से, माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो माया के बंधन का कारण क्या है, साधु और शास्त्र के प्रति जब अगर वो उन्मुख होता है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, अगर वो साधु और शास्त्र का कृपा से अगर वो कृष्ण के प्रति उन्मुख होते हैं, मतलब भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं, तब जीव इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर, मुक्त होकर माया के बंधन से मुक्त होता है। तो मुक्ति का कारण अर्थात ये भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्ति के उपाय क्या है, साधु और शास्त्र की कृपा। क्योंकि साधु के माध्यम ही भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्ति होता है और उन्हीं की कृपा से। साधु कौन है, साधु क्या करते हैं, शास्त्र के वाणी को ही प्रचार करते हैं, समझाते हैं। जैसे टीचर क्या कैसे शिक्षा देते हैं, किताब के माध्यम, ज्ञान है किताब, किताब में, और किताब का वर्णन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इलाबोरेशन करके उसको समझाते हैं। तो वैसे ही साधु शास्त्रों को समझाते हैं। यहाँ उस भगवद गीता का एक श्लोक का उद्धृति आया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बज प्रपद्दन्ते माया मेता तरन्ते। तीन गुणों से युक्त मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रमण करना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोइला कृष्ण वेद पुराण। बद्ध जीव अपने प्रयत्न से अपने कृष्ण भावना मृत को जागृत नहीं कर सकता। बद्ध जीव अपने प्रयत्न से अपने प्रयास से अपने कृष्ण भावना मृत या भगवत तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान जागृत नहीं कर सकते हैं। किंतु अहेतु की कृपावश भगवान कृष्ण ने वैदिक बाण मांगमय तथा उसके पूरक पुराणों का सृजन किए हैं। जीवेर उद्धार लागी कृष्ण कोइलो, जीवेर कृपाए कृष्ण कोइलो वेद पुराण। वेद और पुराण भगवान ने क्यों प्रदान किए हैं? ताकि हम माया की बंधन से मुक्त हो सके। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जानान कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर हय ज्ञान। कृष्ण को भूलकर बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथ शास्त्र ग्रंथ स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। वो उनके द्वारा भगवान को यथा रूप से में समझ सकता है और उस समझ सकता कि है कि और ये समझ सकता है कि कृष्ण उसके नित्य गुरु तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वो अपने बद्ध जीवन का असली ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति को प्राप्त करना जान सकता है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तव्य साधन प्राप्तिर साधन। वैदिक शास्त्र में कृष्ण के साथ जीव के संबंध के विषय में सूचना देती हैं। ये संबंध हैं, जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिधेय है। भगवत धाम वापस जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। वेद शास्त्र में तीन विषय का वर्णन होता है, एक है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान के साथ जो जीव का जो संपर्क है उसे संबंध ज्ञान कहा जाता है। जिस उपाय से भगवान के साथ संपर्क हम जोड़ सकते हैं उसे अभिधेय कहा जाता है। और बहुत आध्यात्मिक जगत में वापस जाना ही प्रयोजन। ऐसे ये तीन तत्व का प्रकाश वेद में अभी होता है। अभिदेव नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रिय कर्म अभिधेय कहलाता है। मतलब इंद्रिय के द्वारा जब भगवान को सेवा होता है उसे अभिधेय कहा जाता है। ऋषि केना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक का मतलब है इंद्रिया, ऋषिक के द्वारा ऋषि के न इंद्रिय के द्वारा ऋषिकेश सारे इंद्रिय के ईश्वर है ऋषिकेश श्री कृष्ण। तो ऐसे भगवान को सेवा इंद्रिय के द्वारा जब भगवान को सेवा होता है उसे ही भक्ति कहा जाता है। और पुरुषार्थ शिरोमणि पुरुषार्थ का मतलब है जीवन का अंतिम लक्ष्य अंतिम उद्देश्य। ये अंतिम उद्देश्य का जो शिरोमणि है सबसे प्रधान जो उद्देश्य है उसे वो है प्रेम, मतलब भगवान के प्रति प्रेम। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है तो वो उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। इहाते दृष्टान्त जोइछे दरिद्रेर घरे सर्वज्ञ आसि दुख देखी पूछाए ताहारे। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को घर एक ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उसने पूछा, तुम्ही कहनु, मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा। ज्योतिषी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा पिता अत्यंत धनवान था किंतु अन्यत्र मरने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में किसी से प्रकट नहीं किया। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिष के शब्दों से निर्धन व्यक्ति को खजाने का पता चला, उसी तरह जब कोई ये जिज्ञासा करता है कि वो दुखी अवस्था में क्यों है तो वैदिक ग्रंथ में उसे कृष्ण भावना के विषय में उपदेश देते हैं। तो ऐसे हम सब बहुत रईस हैं, हम बहुत धनवान हैं क्योंकि हमारा पिता है सारे सर्वलोको महेश्वरम, सारे संसार के मालिक हैं हमारे पिता। तो हमारे पिता अगर सारे संसार के मालिक हैं तो हम कौन हैं? हम भी राजाओं के राजाओं का कुमार, केवल राजकुमार नहीं, राजाओं का कुमार है। तो राजकुमार क्या कभी निर्धन होता है, गरीब होता है? नहीं, बल्कि हमारा ये जो गरीबी, इसका कारण क्या है? पिता के साथ हमारा संपर्क हम भूल गए हैं या हमारे पिता के साथ हमारा संपर्क तोड़ दिया है। तो इसलिए अगर हम पिता के साथ संपर्क फिर से जोड़ लेते हैं तो क्या होगा हमारे, हम तब क्या हम गरीब रहेंगे? कुछ अभाव हमको रहेगा? नहीं। ये ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं वैदिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र के माध्यम हमें इस ज्ञान को प्राप्ति होता है। आज मैं यहाँ ही खत्म कर रहा हूँ, 5 मिनट में तुलसी आरती शुरू होगा। हरे कृष्णा।